ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम इस सवेरे की प्रार्थना में 15 फरवरी 2017 भगवद गीता के 16वें अध्याय से पढ़ रहे हैं। श्लोक क्रमांक 17 और 18। मेरे बात दोहराइए। आत्मसंभाविता स्तब्धा, आत्मसंभाविता स्तब्धा, धनमानमदान्विता, धनमानमदान्विता, युजन्ते नाम यज्ञैस्ते, युजन्ते नाम यज्ञैस्ते, दम्भेन अविधिपूर्वकम्, दम्भेन अविधिपूर्वकम्। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या पृष्ठा से मोहग्रस्त होकर लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए ही बड़े गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। अहंकारम बलम दर्पम, कामम क्रोधम च संश्रिताः, माम आत्म पर देहेषु प्रद्विष्यन्तो अभ्यसूचकाः, प्रद्विष्यन्तो अभ्यसूचकाः। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः, माम आत्म पर देहेषु प्रद्विष्यन्तो अभ्यसूचकाः। तो पहले श्लोक का अर्थ इस प्रकार से है, सॉरी दूसरे श्लोक का अर्थ इस प्रकार से है। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या करने लगता है और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगता है। अपने आप को सब कुछ समझते हुए किसी प्रमाण या शास्त्र की परवाह न करते हुए आसुरी लोग कभी कभी तथाकथित धार्मिक या याज्ञिक अनुष्ठान करते हैं। क्योंकि वे किसी प्रमाण में विश्वास नहीं करते, अतः वे अत्यंत घमंडी होते हैं। थोड़ी सी संपत्ति तथा झूठी प्रतिष्ठा पा लेने के कारण जो मोह उत्पन्न होता है, उसी के कारण ऐसा होता है। कभी कभी ऐसे असुर उपदेशक की भूमिका निभाते हैं, वेरी अमेजिंग, लोगों को भ्रांत करते हैं और धार्मिक सुधारक या ईश्वर के अवतारों के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। यज्ञ करके दिखावा करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं या अपने निजी ईश्वर की सृष्टि करते हैं। सामान्य लोग उनका प्रचार ईश्वर कहकर करते हैं, उनको पूछते हैं। मूर्ख लोग उन्हें धर्म या आध्यात्मिक ज्ञान के सिद्धांतों में बड़ा चढ़ा मानते हैं। वे सन्यासी का वेश धारण करते हैं, उसी वेश में सभी प्रकार का अधर्म करते हैं। वास्तव में इस संसार से विरक्त होने वाले पर अनेक प्रतिबंध होते हैं, लेकिन ये असुर इन प्रतिबंधों की परवाह नहीं करते हैं। वे सोचते हैं कि जो भी मार्ग बना लिया जाए वही अपना मार्ग है। उनके समस्त आदर्श मार्ग जैसी कोई वस्तु नहीं है जिस पर चला जाए। यहाँ पर अविधिपूर्वकम शब्द का उपयोग किया गया है, जिसका अर्थ है कि विधि विधानों की परवाह न करते हुए ये लोग यज्ञ करते हैं। ये सारी बातें सदैव अज्ञान और मोह का कारण बन जाती है। मिथ्या अहंकार, दर्प, बल, काम तथा क्रोध से मोहित होकर असुरी व्यक्ति शरीर में और अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या करते हैं, वास्तविक धर्म की भी निंदा करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामय्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान से अलग होने का सबसे बड़ा कारण है ईर्ष्या, और ईर्ष्या यानी कंपटीशन। हाँ, ईर्ष्या का मतलब ये भी होता है कि द्वेष, कि आपके स्थिति को देखकर मुझे बहुत कष्ट होता है, मैं चाहे प्रगति नहीं करूँगा लेकिन आपकी प्रगति मुझे सहन नहीं होती, या मैं प्रगति नहीं कर सकता लेकिन आपको नहीं करने दूंगा। इसको आसुरी प्रवृत्ति कहते हैं, इसको द्वेष कहते हैं। किसी की उन्नति सहन नहीं होना, उसको द्वेष कहते हैं। और सबसे बड़ा कारण जो है हमारा यहाँ आने का वही है, जब ये ईर्ष्या उत्पन्न होती है भगवान के प्रति, तब हम सोचते हैं कि मैं क्यों ना भगवान बनूं, यही क्यों, ये नीले रंग वाले क्यों, मैं क्यों नहीं। उसी भावना से हम यहाँ पर शरीर धारण करते हैं और नीचे आ जाते हैं। तो द्वेष ऐसी एक चीज़ है जो स्वयं की प्रगति तो रोक ही देती है पूरी, लेकिन पूरा जो हमारा आत्मा का स्थिति है उसको नष्ट कर देती है। भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति को मैं निरंतर नरक में भेजा करता हूँ। तो अभी हमारे अंदर तो ऐसे दो सिंह वाले और दांत वाले राक्षस तो नहीं है जैसे पहले हुआ करते थे, लेकिन ये राक्षसी प्रवृत्ति ज़रूर है। पहले ज़माने में तो अलग अलग देशों में राक्षस रहा करते थे, देवता भगवान के भक्त। फिर वो एक परिवार में आए द्वापर में, फिर अभी कलयुग में वो एक मन में रहते हैं, एक हृदय में रहते हैं, एक ही प्रकार के लोग, दोनों प्रकार के लोग एक ही इसमें रहते हैं। तो संसार की सृष्टि जब निर्माण हो रही थी तभी भी भगवान ब्रह्मा ने सारी प्रजापतियों को निर्माण किया था, लेकिन भगवान ने देखा कि इतना सब निर्माण करने के बाद भी कोई निर्मिति नहीं हो रही है। निर्माण करने वाले को निर्माण कर दिया लेकिन निर्मिति आगे नहीं बढ़ रही है, क्रिएशन इज नॉट गोइंग अहेड। क्योंकि भगवान ने देखा कि सबके अंदर, किसी के अंदर दैन्य नहीं है और सबके अंदर ईर्ष्या है, कंपटीशन है, तू तू मैं का भाव है। तब भगवान ने सब में अपना संचार किया, जैसे भगवान का संचार हुआ यानी कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इन वन सेंस। जैसे ही कृष्ण भावना, कृष्ण भगवान संचारित हुए तो सब में दैन्य आ गया, नम्रता आ गई और तुरंत संगठन विकास शुरू हुआ। हमारे जीवन में भी अगर हमको कुछ, किसी लोगों को इकट्ठा करना है तो नम्रता होना बहुत ज़रूरी है, और नम्रता के साथ ईर्ष्या और द्वेष नहीं होना चाहिए। भगवद गीता में ऐसा लिखा है कि द्वेष तो दुश्मनों से भी नहीं करना चाहिए। जो लोग असुरी होते हैं, जो लोग पतित होते हैं या तो अपराधी होते हैं या हमारा अहित चाहते हैं, हमको उन्होंने पहले से नुकसान पहुंचा दिया है, ऐसे लोगों पर द्वेष नहीं करते, ऐसे लोगों पर भी द्वेष नहीं करते। ऐसा ही भक्त जो है वो आगे जाकर भगवान की सेवा में कुछ बड़ा कार्य कर सकता है। अगर भक्तों का संगठन बनाना है आपको, तो संगठन का नेता जो है उसको अपने विरोधियों के प्रति भी द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि तो सहज है, वो अपना विरोध जो करता है उसको द्वेष या उसको संघर्ष करना हमारा स्वभाव है। लेकिन भगवान का भक्त जो है वो सारी घटनाओं को भगवान का व्यवस्था के रूप में देखता है। हमारे मराठी में कहावत है, निंदका से घर असावे शेजारी, क्योंकि वो निंदा करने वाले लोग जो होते हैं वो हमारे सहायक होते हैं, वो भगवान की कृपा को एक विशिष्ट रूप से, विचित्र रूप से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि जब हमको यश मिलता है संगठन करने में और प्रचार करने में तो हमारा भी गर्व बढ़ सकता है, और जैसे ही गर्व बढ़ता है, घमंड बढ़ता है, तो ईश्वर हो हम अहम भोगी, हमको लगता है मैं ही करता हूँ, देखो मेरा प्रभाव कितना है, देखो मेरे प्रभाव से कितने लोग भाग रहे हैं मेरे पीछे, इतना जन समुदाय। सबसे बड़ा दर्प होता है ना वो अनुयायियों का होता है, आप चाहे फल खाते होंगे, रात को एक घंटा सोते होंगे और 108 माला रोज करते होंगे, लेकिन जब अनुयायी हो जाते हैं अपने लोग, चरण छूने वाले, वाहवा करने वाले और आपका उपदेश पालन करने वाले, या तो शिष्य बन जाते हैं या तो और कोई फॉलोअर हो जाते हैं, उसका जो होता है ना गर्व, बहुत मुश्किल होता है टालने के लिए। हम जानते हैं जब भी ठाकुर भक्ति विनोद वो विषि किशन को दमन करने के लिए गए थे ना, तो वो विषि किशन के पास मन को पढ़ने की भी शक्ति थी, मन को भी वो पढ़ता था लोगों की। तो जैसे ही ठाकुर भक्ति विनोद जी आए तो उन्होंने कहा, भक्ति विनोद जी मैं जानता हूं तुम क्यों आए हो। तो ठाकुर भक्ति विनोद ने उत्तर दिया कि तो तुम ये भी जानते होंगे कि तुम भगवान नहीं हो, तुमको अगर इतना समझता है तो ये भी जानते होंगे। तो उन्होंने एकांत में उनको बताया, मैं जानता हूं कि मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन जब इतनी सारी बड़ी संख्या में जनता मेरे चरणों में गिर जाती है, मुझे वंदन करती है, मेरा पूजन करती है, मुझे भगवान मानती है, मुझे भोग लगाती है, मुझे फूल अर्पण चरणों में करते हैं, चरण धोते हैं मेरे, भगवान के रूप में मेरे आदेशों को झेलते हैं, तो वो जो आनंद है उसको मैं त्याग नहीं सकता। इसलिए मैं जानता हूँ कि मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन जब लोग मुझे भगवान बोल रहे हैं तो मुझे वो उसको छोड़ना बहुत मुश्किल है, ये एक्सेप्टेड, क्योंकि वो जो है ना, एक तो लाभ है, जो मैं भी कोई नेता बन गया तो मुझे पैसा मिलता है, मुझे बड़ी कुर्सी मिलती है, बड़ी गाड़ी आती है लेने के लिए, अलग से खाना मिलता है और अलग से कोई एस्कॉर्ट होता है, लाभ है, लाभ मुझे कुछ लाभ होता है। दूसरा है प्रतिष्ठा, मेरा नाम चार जगह पर फैल जाएगा, देखो फलाना फलाना प्रभु जी स्वामी जी कितने बड़े हैं, आजकल टॉप में चल रहे हैं, उनकी कथा जो है वो एकदम टॉप में चल रही है, हाँ उनकी कथा में तो डेट ही नहीं मिलती, हजारों की संख्या में लोग आते हैं और मैदान मैदान चलता नहीं है, समुद्र किनारा ही देखना पड़ता है, एक आध लाख लोग तो आ ही जाते हैं। ऐसा सब जो प्रतिष्ठा होती ना, तो वो और भी सूक्ष्म है जो प्रतिष्ठा होती है, और किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति को अपनी प्रतिष्ठा को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, या प्रतिष्ठा का कहीं नुकसान हो जाए तो काफ़ी तकलीफ होती है उसको। हम जो 100,000 लोग प्रणाम कर रहे हैं और एक व्यक्ति ने प्रणाम नहीं किया तो भी दुख होता है उसको, कोई नहीं किया उसने या 100,000 व्यक्ति सराह रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं और एक व्यक्ति कुछ ऐसे विवादात्मक प्रश्न कर रहा है तो भी वो सभा में बहुत अस्वस्थता मिल जाती, क्यों भाई इतने लोग हमको मान रहे हैं, आप क्यों नहीं मान रहे। प्रतिष्ठा, हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती क्या कहते हैं जिनका आज जन्मदिन है, वो कहते हैं प्रतिष्ठा शुक्र रविष्ठा, हमारी विष्ठा भी कुछ काम आती है, गाय की विष्ठा भी काम आती है, सभी लोगों की विष्ठा काम आती है, लेकिन जो हमारी विष्ठा खा के उसकी विष्ठा जब बनती है तो वो एकदम सबसे यूजलेस होती है वो। तो भक्ति सिद्धांत जी महाराज कहते हैं कि प्रतिष्ठा शुक्र रविष्ठा, इतनी घातक है वो, लेकिन उसके आगे एक बाण है माया का, वो है पूजा। लोग उसके बाद में जब हम प्रतिष्ठित बन जाते हैं, बहुत फेमस हो जाते हैं, तो लोग हमारी पूजा करने लगते हैं, अरे आप क्रिकेटर बन जाओ, आपने सेंचुरी मारा तो आपका पूरा फोटो ऑल्टर में आ जाता तुरंत, है ना। कितने लोगों के अभी ऑल्टर में, पहले हमारे बचपन में सुनील गावस्कर का फोटो हुआ करता था, अभी तेंदुलकर का फोटो होता है भगवान के बाजू में, उनको भी फूल अर्पण करते हैं और वास्तव में मानते हैं कि भगवान ही है, इतना बड़ा काम भगवान ही कर सकता है, इतनी सेंचुरी तो भगवान ही मार सकता है तो ये पूजा जो है ना, वो माया का सबसे आखिरी बाण है हमारे ऊपर कि मैं भगवान हूँ, जिसके लिए ही हम लोग यहाँ पर आए। सब लोग उस मंजिल तक पहुँच नहीं पाते कि लोग उनको भगवान मानने लगते हैं, तो ये सब भगवान की ईर्ष्या की वजह से, भगवान की ईर्ष्या कर रहे हैं, भगवान के साथ कंपटीशन कर रहे हैं हम लोग, उनको स्वामी बनना है, ईश्वरोऽहम् अहम् भोगी, रावण की यही भावना थी कि दुनिया में जो सब कुछ, हर एक सुंदर वस्तु जो है वो मेरे भोग के लिए होनी चाहिए, ये भगवान भगवान कुछ नहीं होता है, मैं ही भगवान हूँ। हिरण्यकश्यपु का भी यही भाव था, इतना भगवान से घृणा थी उसको, और भगवान की घृणा हमेशा भोग के साथ में होती है, मतलब हमारा भोग करने की जितनी इच्छा होती है ना, उतना ही भगवान के साथ ईर्ष्या करते हैं हम लोग। भक्ति रसामृत महाराज बताते हैं कि जितना हम पर आज भी हमारे में इंद्रिय भोग करने की इच्छा है, उतना ही हम लोग भगवान से द्वेष कर रहे हैं, क्योंकि इंद्रिय भोग करने की जो भी प्रवृत्ति है वो भगवान उसके मालिक हैं, भगवान उसके अधिकारी हैं, और भगवान का अधिकार जब हम अपने को लेना चाहते हैं तो मतलब भगवान से ईर्ष्या है हमारे, इसलिए भगवान का अधिकार हम लेना चाहते हैं। तो हमको लगता है हम भक्त हैं भगवान के बड़े, लेकिन अगर झांक के देखेंगे हमको कितनी चीज़ों में अभी भी आसक्ति है, कितनी चीज़ों को अभी भोग लेने की इच्छा है, उतने हद तक हम भगवान का द्वेष कर रहे हैं। तो ये जो भगवान बनने की प्रवृत्ति जो है, हमको सुनेंगे अरे मुझ में तो नहीं है, मैं तो इतना फकीर आदमी हूँ, गाँव में रहता हूँ, सूखी फूकी रोटी खाता हूँ, रोटी और चटनी खाता हूँ, और कुछ है नहीं हमारे पास। लेकिन प्रवृत्ति जो है ना कंट्रोल करने की और दूसरों को ऊपर नहीं आने देने की, ये छुपी रहती है अंदर। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि अभी कलयुग में हमारे पास ऐसे लोग दिखेंगे नहीं जो राक्षसी राक्षस बन के आपके सामने आते हैं। जैसे कि हिरण्यकश्यप राक्षस बन के सामने आया था, वो उसमें कोई उसको टेंशन नहीं था कि मैं राक्षस बनूंगा तो मेरा बदनामी होगा, जो भी है वो है, मैं जो भी हूँ हूँ, रावण भी ऐसा ही था। तो राक्षस बनने की प्रवृत्ति होती है, व्यक्ति राक्षस दिखे या ना दिखे वो अलग बात है। राक्षस की सबसे बड़ी प्रवृत्ति क्या होती है, वो द्वेष करता है, भगवान का द्वेष करता है और साथ साथ भगवान के भक्तों का भी द्वेष करता है। जहाँ जहाँ भगवान का अंश दिखाई पड़ता है वहाँ वहाँ उसका द्वेष विस्तारित हो जाता है। तो हमारे बीच में अगर कोई ऐसे व्यक्ति है जो खुद के मन के अनुसार यज्ञ करते हैं, खुद के अनुसार कोई विधि करते हैं, वो कहते हैं यही विधि है, मैं जो कहूँगा वही धर्म है, अपना खुद का एक फॉर्मूला बना लेते हैं कि मैं तो ऐसा ऐसा करता हूँ, मेरी ऐसी ऐसी श्रद्धा है, मैं तो बचपन से ऐसे करते आ रहा हूँ, थोड़ा माँ पिताजी का, थोड़ा सा दादी जी का, थोड़ा सा टीचर का, थोड़ा सा खुद का बना के अपना धर्म बना देते हैं और भगवान से एक कंपटीशन खड़ी कर देते हैं। तो कहते हैं कि जब द्वेष हमारे अंदर है तो हम आगे प्रगति नहीं कर सकते हैं, यहाँ तक कि भौतिक दुनिया में भी प्रगति नहीं कर सकते। और एक बहुत सुंदर सोचने लायक बात है कि हमारे 6 शत्रु हैं, है ना, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर। मद जो है ना ये धन की वजह से, सुंदरता की वजह से, प्रतिष्ठा बढ़ने की वजह से मद आता है। मद हम लोग ऐसा इंटॉक्सिकेट हो जाते हैं कि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, मेरे सामने कोई नहीं है, नोबडी कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी। तो इसमें विशेष बात यह है कि काम को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। गोपियाँ भी भगवान के वश लिए बहुत काम वश हो गई थी, उनके मन में भगवान के लिए इतनी काम वासना, मतलब शरीर की नहीं लेकिन भगवान के प्रति उनकी इतनी आकर्षण था। तो अपना जो काम था, काम यानी जो पुरुष स्त्री में होता है, स्त्री पुरुष में होता है, वो उनको भगवान के प्रति था, तो काम भगवान की सेवा में लग गया। क्रोध, हनुमान जी क्रोधित हो गए और उन्होंने लंका जला दिया, भगवान की सेवा में इस्तेमाल किया उसको। तो क्रोध भी भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। हमारे बच्चे अगर समझो नहीं मानते हैं कुछ बातें, भगवान की भक्ति में नहीं सुनते हैं कुछ बातें, तो कभी कभी हम क्रोध करते हैं और क्रोध का इस्तेमाल करके उनको भगवान की ओर ले जाना चाहते हैं। कभी दंड देते हैं, कभी धमकी देते हैं कुछ की चीज़ की, दंड की। फिर लोभ, हाँ, रूप गोस्वामी कहते हैं लौल्यम यानी लोभ, भगवान का लोभ होना चाहिए, भगवान की सेवा का लोभ होना चाहिए, भगवान के भक्तों का सेवा लोभ होना चाहिए। तो लोभ भी हुआ रहा हमारे अंदर होता है तो खुद के लिए ना होते उसको भगवान में आप डाल सकते हो। ग्रीड होते ना, ग्रीड कि हमको पैसा चाहिए, पैसे के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, तो स्वार्थ के लिए हम कुछ भी करते हैं, लेकिन वही लोभ की प्रवृत्ति भगवान के लिए अर्पण करेंगे तो भगवान प्राप्त हो सकते हैं। मद, हाँ, काम, क्रोध, लोभ, मद। मद जो है ना वो भगवान के सानिध्य का भी एक मद होता है, या तो हम अभी प्रधानमंत्री के पीए हैं तो वो भी एक मद है कि मैं सबसे टॉप व्यक्ति का सेक्रेटरी हूँ, मेरे पास इतनी पावर है, प्रधानमंत्री इतनी पावर है, या हमारी कंपनी का जो सीईओ है उसका पीए उतनी ही पावर रखता है, उसका लेटर आएगा तो तुरंत लोग फॉलो करते हैं एज इफ वो सीईओ ही है कंपनी का। तो लोभ भी भगवान की सेवा में लग सकते हैं। मोह, हाँ, मुझे एग्जैक्टली उदाहरण पता नहीं आपको बताने के लिए, लेकिन शास्त्र के अनुसार मोह भी भगवान की सेवा में लग सकता है। लेकिन विशेष बात यह है कि द्वेष जो है वो भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते हम। वो एक ही ऐसी वस्तु है जो भगवान की सेवा में लगाना किसी भी स्तर पर मुमकिन नहीं है। आप किसी का भी द्वेष करके भगवान की भक्ति को नहीं बढ़ा सकते, यहाँ तक कि राक्षस का भी द्वेष नहीं कर सकते हैं। हम बोलेंगे तो राक्षस को द्वेष करते हैं, हम तो भगवान के जो शत्रु जो है उनका द्वेष कर रहे हैं। लेकिन भगवान वहाँ बता रहे हैं कि द्वेष शत्रु का भी करना नहीं चाहिए, तब जाकर हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। इसलिए ये द्वेष जो चीज़ है ना, ये हमारे भक्तों के समुदाय के अंदर आ गए, ऐसा कहते हैं कि भक्त अगर द्वेषी हो जाता है किसी का, समझो अभी आपने प्रवचन दिया, फिर इनने प्रवचन दिया, इनके लिए बहुत तालियां बड़ी और आपका कोई कोई अप्रिशिएट नहीं किया गया, तो आपको इन पर द्वेष हो जाएगा, अरे ये तो मेरे बाद में आया था, मैंने इसको श्लोक सिखाए थे और कैसे प्रवचन करना है बताया था मैंने ट्रेनिंग दिया था जब नया नया आया था, आज देखो उसकी ठाट लोगों को ज़्यादा दग रहे हैं, मैं तो देखता ही लोग मुझे कोई मेरी तरफ, तो द्वेष हो जाता है। तो वो जब भक्तों के बीच में हो जाता है ना, तो भक्तों का सर्वनाश होता है, ऐसे बताया गया। द्वेष ये सर्वनाश करने वाली चीज़ है, और भगवान का जो द्वेषी होता है, भगवान के भक्तों का द्वेषी होता है, वो मिथ्या घमंड करता है, अपने आप को सर्वे सर्वा मानता है, सब चीज़ उसके लिए ऐसे मानता है, मैं ही श्रेष्ठ हूँ ये मानता है। इसलिए द्वेष भक्तों के बीच में हो सकता है, जब भक्त लोग साथ में काम करते हैं तो किसी को ज़्यादा सराहना मिलती है, किसी को कम मिलती है, किसी को बड़ी सेवा मिलती है, किसी को छोटी सेवा मिलती है, पिछली बार बड़ी मिली थी उसको निकाल के अभी बड़ी सेवा किसी और को दी गई, तो ये सब चीज़ से द्वेष उत्पन्न होता है और भक्तों को इसे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि द्वेष कभी भी आपके अंदर घुस सकता है, हमारे अंदर घुस सकता है, कभी भी घुस सकता है। स्थिति ऐसी है भौतिक दुनिया में, क्या करें उसको, भौतिक दुनिया ऐसी बनाई गई है कि बार बार हमारे को मन में द्वेष करने का, अरे मैं भी इतना क्वालिफाइड हूँ लेकिन मैं उस पोजिशन में क्यों नहीं हूँ, मैं भी कर सकता हूँ लेकिन मुझे नहीं रखा गया उसके अंदर, उस व्यक्ति को रखा गया है। देखो मैं भी इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन मेरा इतना इनकम नहीं हो रहा है, उतना देखो इनकम उसका हो रहा है, मैं भी इतना अच्छा डॉक्टर हूँ लेकिन मेरे पास इतने मरीज नहीं आते, उसके पास कितने अच्छे मरीज आते, मैं भी कितना कुशल हूँ लेकिन उसको उसके माँ बाप ने कितना बड़ा प्रॉपर्टी देकर रखा है MBBS होने के पहले, और मेरे पास माँ बाप ने मुझे कुछ नहीं दिया है, और देखो माँ बाप के मैं संपत्ति पर इतना गर्व करके इतना डोल रहे हैं, उसके पास हमारे ही घर में सामने रहता है, नेबर है मेरा, उसके पास दो गाड़ी है, मेरे पास एक ही गाड़ी है ना, या उसकी पत्नी मेरे पति से सुंदर है ज़्यादा कितने प्रकार की चीज़ें हैं दुनिया में। फॉरेन में अगर जाएंगे आप तो बोलेंगे उसके पास जो कुत्ता है वो मेरे कुत्ते से बहुत ज़्यादा अच्छी जाति का है उधर अलग रेफरेंस है, अलग अलग स्थितियाँ हैं, उसके घर में बड़ा लॉन है, मेरे पास उतना लॉन अवेलेबल नहीं है, उधर की स्थिति अलग है। कहने का तात्पर्य यह है कि द्वेष के लिए अनंत कारण इस दुनिया में हैं, लेकिन ज्ञान के आधार पर और खास करके संतों की कृपा के आधार पर हमको इस द्वेष को पहचानना चाहिए और द्वेष में वश नहीं होना चाहिए। भगवान कहते हैं मैं समोहम सर्वभूतेषु, मैं किसी में द्वेष नहीं करता, मैं किसी में प्रेम नहीं करता, भेदभाव नहीं करता, और भक्तों को भी ऐसे ही होना चाहिए, किसी में द्वेष नहीं करना चाहिए, विशेष प्रयत्न करना चाहिए कि जो हमको दिल दुखाते हैं, जो हमारे शत्रु के समान व्यवहार करते हैं, उनके प्रति भी द्वेष रखना नहीं चाहिए, वो व्यक्ति भगवान की भक्ति में बहुत ज़्यादा प्रगति कर सकता है, अगर वो हम पर द्वेष करने वाले या हमको नुकसान पहुँचाने वाले या हमारे शत्रु समान व्यवहार करने वाले पर भी वही भाव रखता है जो भक्तों के प्रति प्रेम करने वाले के प्रति रखता है। कड़ी कठिन बात है ये, हम तब तक उनकी सेवा करेंगे जब तक वो हमारे गुड बुक्स में हैं, जो हमारी तारीफ करते हैं, हमारे गुट गट में हैं या हमारा मानते हैं, तब तक हम उसका संबंध रखते हैं, जैसे ही वो हमारा कंपटीटर बन गया तो हम उसको छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी ऐसा लगता है किसी ने हमारा दिल दुखाया तो हम उसके लिए प्रार्थना भी नहीं करते हैं, नहीं करूँगा प्रार्थना, क्यों करूँगा प्रार्थना, तुम मुझे इतना बुरा शब्द बताया, मैंने उसके लिए कितनी देर प्रार्थना किया, कितने साल तक उसने मुझे मेरा अपमान किया और मेरे लिए गलत काम किया, लेकिन भक्त को ऐसा होने पर भी उसकी जो प्रवृत्ति है वो चलाते ही रहनी चाहिए, उसको स्थितियां बदलने पर खुद को नहीं बदलना चाहिए। इसके लिए हमारे शास्त्र में सुंदर उदाहरण आता है, एक साधु था जो नदी में स्नान कर रहा था और उसको एक बिच्छू काट रहा था, क्योंकि वो बिच्छू डूब रहा था पानी में, तो साधु को लगा कि अरे बिच्छू डूब रहा है तो उसको निकालना चाहिए, तो निकालने के लिए तो हाथ से उठाएगा ना उसको, तो हाथ से उठाया तो उसने तुरंत काटा उसको, तो काटने के दर्द से तो छोड़ दिया उसको ऐसे झटके से एकदम, फिर दोबारा डूबने लगा वो, फिर दोबारा साधु ने उसको उठाया तो दोबारा डंक मारा उसने, दोबारा उसके दर्द से वो झटका दिया उसको, ऐसे कई बार हो गया, तो साथ में भी कोई साधु स्नान कर रहे थे, बोले महाराज जी क्या कर रहे हो आप, तो समय बर्बाद कर रहे हो, ये तो काटते रहेगा आपको और आप बार बार उसको बचाने का कोशिश कर रहे हो, आप चाहते हुए उसको बचा नहीं सकते हो, क्योंकि आप थोड़े से नदी में अंदर हो और आपको फेंकने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, उसके पहले वो काट लेगा आपको। तो साधु ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि बिच्छू का जो स्वभाव है वो डंक मारना है। सांप बिच्छू होता है ना, उसको उनको भी द्वेष का एक ऐसा सिंबल माना गया, लक्षण माना गया कि वो द्वेष के एक प्रतिनिधि हैं। सांप और बिच्छू लोग द्वेषी होते हैं वो, तो उनकी प्रवृत्ति है कि जो दिखेगा उसको काटना है उनको। वो कहते हैं कि वो अपने डंक मारने की प्रवृत्ति में इतना टिका हुआ है, इतना निश्चय है उसको कि मुझे मारना ही है डंक, तो मैं मेरी दया करने की प्रवृत्ति को क्यों छोड़ूं? साधु होने पर मेरी प्रवृत्ति दया की है, तो वो अपनी प्रवृत्ति पर इतना टिका हुआ है तो मैं मेरी प्रवृत्ति को क्यों छोड़ूं? इफ ही सो डिटरमाइंड फॉर हिज बाइटिंग मी, आई शुड बी डिटरमाइंड इन गिविंग मर्सी टू हिम। साधु ऐसे सोचता है, नहीं तो हम लोग बोलेंगे दो बार बचाने की कोशिश किया तो हम लोग उसको बाद में डुबा देंगे, ये मर जा तू। ये हमारी प्रवृत्ति, सामान्य प्रवृत्ति, मतलब वो पापी प्रवृत्ति नहीं, मतलब ये नॉर्मल रिएक्शन है। लेकिन विशेष साधु प्रवृत्ति वो है कि वो आपका अपराध करने के बाद भी उसके लिए कल्याण ही करेगा, वो उसका कल्याण ही सोचेगा, क्योंकि वो जानता है कि उसके अंदर जो प्रवृत्ति है वो पाप प्रवृत्ति, आत्मा पापी नहीं है, प्रवृत्ति पापी है। डोंट हेट द सिनर, हेट द सिन। पाप जो है उसका घृणा करो आप, लेकिन पापी की घृणा करने की जरूरत नहीं है। एक बार पाप नष्ट हो गया तो पापी दिखने वाला व्यक्ति भी फिर बहुत चमकता है, क्योंकि उसके ऊपर पाप का ग्रहण लग गया, इसलिए वो वैसे दिखाई पड़ता है। तो इसलिए आज का हमारा सुबह का चिंतन यही है कि किसी भी कीमत पर हमको किसी का द्वेष नहीं करना चाहिए। हजारों कारण हमारे सामने होंगे द्वेष करने के लिए, लेकिन हम जानना चाहिए कि द्वेष करने से जिसका द्वेष कर रहे हैं उसका नुकसान नहीं होता है, द्वेष करने से द्वेष करने वाले का नुकसान होता है, और जिसका आप द्वेष कर रहे हो उसका कुछ नहीं बिगड़ता है, वो अपने अपने कर्म के अनुसार चलते रहता है। लेकिन हम जब द्वेष किसका करते हैं तो खुद का महानाश कर लेते हैं, और जिसको भजन करना है, भगवान की भक्ति में जिसको आगे बढ़ना है, उसके लिए महानाशकारी काम है ये। और उसके साथ में फिर द्वेष करने से फिर ऑटोमेटिकली काम, क्रोध, लोभ सब अपने आप उग जाते हैं उसके पीछे पीछे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, त्रणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना, इसको हमारे भक्ति के मार्ग का एक अलंकार बताया है। भक्तों में जब ये गुण आते हैं नम्रता के और अद्वेषी भाव के, तो फिर वो बहुत ज़्यादा प्रगति कर सकता है। उसके अंदर शायद बहुत बड़ा ज्ञान नहीं होगा, बड़ा प्रवचनकार नहीं होगा, उसके अनुयायी नहीं होंगे, कुछ भी ऐसे आप जो जिस पर आप गर्व करते हो, वैसे कुछ भी चीज़ उसके पास नहीं होगी, फिर भी जब वो अद्वेषी रहता है और नम्र रहता है तो भगवान की नज़र उस पर पहले जाती है, भगवान की नज़र उस पर पहले गिरती है, और भगवान की नज़र जनरली किसी पर ज़्यादा जल्दी आकर्षित नहीं होती है, लेकिन अद्वेषी स्वभाव और नम्रता ये भगवान को आकर्षित कर लेती है। जो भगवान को आकर्षित कर लेता है फिर भगवान का बन जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।